चलिए रुकू नंबर 15 पे चलते हैं। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनीयुल हमीद। ए लोगो, तुम अल्लाह के मुख्ताज हो और अल्लाह बेनियाज और खूबियों वाला है। अगर वो चाहे तो तुमको फना कर दे और एक नई मखलूक पैदा कर दे। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। और ये बात अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़्रा। और कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। हाँ, अगर कोई बोझ से लदा हुआ दूसरे को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा तो वो इसमें से कुछ ना उठाएगा, अगरचे वो रिश्तेदार ही हो। तो सिर्फ उन्हीं को आगाह कर सकता है जो गायबाना तौर पर अपने रब से डरते हैं और नमाजों की पाबंदी करते हैं। और जो भी पाक हो जाए वो अपने ही नफ़े के लिए पाक होगा। और लौटना अल्लाह ही की तरफ है सबका। वमा यस्तविल आमा वल बसीर। अंधा और आँखों वाला बराबर नहीं। और न तारीकी और रोशनी, और न छाँव और धूप, और जिंदे और मुर्दा बराबर नहीं। अल्लाह ताला जिसको चाहता है सुना देता है। और आप इन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में हैं। आप तो सिर्फ डराने वाले हैं। और हम ही ने आपको हक देकर खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाकर बना सुनाने वाला बनाकर भेजा। और कोई उम्मत ऐसी नहीं जिसमें कोई डर सुनाने वाला ना गुजरा हो। और अगर ये लोग आपको छुटलाएं तो ये लोग इनसे पहले हो गुजरे हैं, उन्होंने भी छुटलाया था। इनके पास भी इनके पैगंबर मोजजात लेकर आए और सहीफे और रोशन किताबें लाए थे। ये तरकू नंबर 15, इसका उन्वान क्या है? इंसान मुख्ताज है। आज की आयात तदब्बुर भी यही है, आयत नंबर 15 से लेके 18 तक। या अय्युहन्ना सुअंतुमुल फुकरा। ए लोगो, तुम फकीर हो, मुख्ताज हो। अल्लाह ताला की जात बेपरवाह है। तुम उसका काम नहीं करोगे, तुम्हें ले जाएगा औरों को ले आएगा। तुम उसकी जरूरत नहीं हो। लेकिन क्यामत के दिन का सोचो कि जब बोझ से लदा हुआ शख्स अपने बोझ के लिए दूसरे को बुलाएगा कि उठा लो, तो कोई उसकी मदद नहीं करेगा। क्या हम अपने आप को अल्लाह के सामने मोहताज समझते हैं, फकीर समझते हैं? इंसान अपने आप को जब अल्लाह के सामने मोहताज समझता है तो फिर असल में वो काम करता है जो उसको करने को अल्लाह ताला ने कहा। हकीकत क्या है कि जब इंसान के अंदर आजजी नहीं आती ना, तो बात नहीं निकलती, बात अमल की आती नहीं। अल्लाह की बात को, उसके हुक्म को सुन के वही लोग जमे रहते हैं, बैठे रहते हैं जो अकड़े होते हैं। अंदर कहीं अपनी ज़ात की बड़ाई होती है। ऐसे लोगों के लिए ये आयतें दावते सोच और फिक्र देती हैं कि कल क़यामत के दिन क्या होगा, जब अल्लाह ताला हमारे सामने ऐसे हालात ले आएगा कि कोई बोझ से लदा हुआ शख्स है और उसका बोझ कोई नहीं उठा रहा। वो सब लोग जिनकी खातिर रब को नाराज़ किया था, उनमें कोई भी हाथ देने को नहीं आएगा। वमा यस्तविल आमा वल बसीर। आखिर में आप देखिए, बराबर नहीं हो सकते चार चीज़ें। कौन कौन? अंधा और आँखों वाला, तारीकियाँ और रोशनियाँ, ठंडी छाँव और धूप की तपिश, जिंदा और मुर्दा। और फिर नबी सल्लम से फरमाया कि आप तो सिर्फ हक बात बताने वाले हैं, मुर्दों को आप नहीं सुना सकते, लिहाजा इनको इनके हाल पे छोड़ दो। हमारे अमल की बात क्या है कि अपने अंदर आजजी पैदा करनी है, खुद को मोहताज समझना। अल्लाह की ज़रूरत हमें आज भी उतनी है जितनी पैदा होने वाले दिन थी, तो लिहाजा खुद को झुका के रखना है। रुकू नंबर 16। फिर मैंने इन काफिरों को पकड़ लिया, सो मेरा अज़ाब कैसा हुआ? अलम तरा अन्नल्लाह अनज़ला मिनस्समाई माअन। क्या आपने इस बात पर नज़र नहीं की कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा, फिर हमने इसके ज़रिए से मुख्तलिफ रंगतों के फल निकाले। और पहाड़ों के मुख्तलिफ हिस्से हैं, सफ़ेद और सुर्ख, कि इनकी भी रंगतें मुख्तलिफ हैं और बहुत गहरे स्याह। और इसी तरह आदमी और जानवरों और चौपायों में भी बस ऐसे हैं कि इनकी रंगतें मुख्तलिफ हैं। इन्नमा यक्षल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह से उसके वही बंदे डरते हैं जो इल्म रखते हैं। वाकई अल्लाह ताला ज़बरदस्त और बड़ा बख्शने वाला है। जो लोग किताबुल्लाह की तिलावत करते हैं और नमाज की पाबंदी रखते हैं और जो कुछ हमने इनको अता फरमाया इसमें पोशीदा और एलानिया खर्च करते हैं, और वो ऐसी तिजारत के उम्मीदवार हैं जिसमें कभी खसारा ना होगा, लन तबूर, ताकि इनको इनकी उजरतें पूरी दे दे और इनको अपने फजल से और ज़्यादा भी दे। बेशक वो बख्शने वाला और कदरदान है। और ये किताब जो हमने आपके पास वही के तौर पर भेजी है ये बिल्कुल ठीक है, जो कि अपने से पहली किताब की भी तस्दीक करती है। अल्लाह ताला अपने बंदों की पूरी खबर रखने वाला, खूब देखने वाला है। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना अस्तफ़ैना मिन इबादिना, फिर हमने इन लोगों को इस किताब का वारिस बनाया जिनको हम अपने बंदों में से पसंद फरमाया। फिर बास तो इनमें अपनी जानों पर जुल्म करने वाले हो गए और बास इसमें दरमियाने रास्ते पे चलने वाले, और बास इनमें अल्लाह की तौफीक से नेकियों में तरक्की करते चले आते हैं। ये बड़ा फजल है। क्या जन्नत अदनी यदखुलूनहा, वो बागात जिसमें ये हमेशा रहने के हैं, जिसमें वो दाखिल होंगे, सोने के कंगन और मोती पहनाए जाएंगे और पोशाक इनकी वहाँ रेशम की होगी, और कहेंगे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने हमसे गम को दूर किया। बेशक हमारा परवरदिगार बड़ा बख्शने वाला और बड़ा कदरदान है, जिसने हमको अपने फजल से हमेशा रहने के मुकाम में ला उतारा, जहाँ न हमको कोई तकलीफ पहुँचेगी और न हमको कोई खस्तगी पहुँचेगी। और वो लोग जो काफिर हैं इनके लिए दोजख की आग है, ना तो उनकी कज़ा आएगी कि मर ही जाएं, और ना दोजख का अजाब जो उनसे हल्का किया जाए। हम हर काफिर को ऐसी ही सज़ा देते हैं। वहुम यस्तरिखून फीहा, और वो लोग इसमें चिल्लाएंगे, क्या कहेंगे, रब्बना अखरिजना नामल सालेहन, ए हमारे परवरदिगार हमको निकाल ले, हम अच्छे काम करेंगे बरखिलाफ उन कामों के जो हम किया करते थे। जवाब क्या मिलेगा, अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फी, क्या हमने तुमको उम्र ना दी थी कि जिसको समझना होता वो समझ जाए, और तुम्हारे पास डराने वाला भी पहुंचा था, बस मजा चखो कि ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं। ये तरकु नंबर 16, इसका अनवान है क्या हमने तुमको उम्र ना दी थी। इस रुकू में शुरू में अल्लाह ताला ने कायनात की चार बातें हमारे सामने रखी। असल में ये एक किताब है जो हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है कायनात की। कहीं से आसमान से पानी बरसता है और उससे मुख्तलिफ रंगों के फल निकलते हैं, कभी सोचा कैसे? हम तो रंग नहीं डालते, लेकिन सुर्ख टमाटर कैसे उगते हैं, ऑरेंज कैसे ऑरेंज कलर का बनता है, कभी सोचने की ज़रूरत है? यही चीज़ें हैं जो इंसान के अंदर फिर अल्लाह ताला की ज़ात की बड़ाई और अपनी कम आजजी का एहसास पैदा करती हैं। पहाड़ों में सफ़ेद सुर्ख और गहरी स्याह धारियाँ कैसे बन गई है? फिर इंसानों और जानवरों में मुख्तलिफ मवेशी मुख्तलिफ रंगों के हैं। और एक चीज़ जो इसमें हमें पता चली कि अल्लाह के बंदों में इल्म वाले वही हैं जो उससे डरते हैं। ये बहुत हम सब के लिए तदब्बुर का नुक्ता है कि इल्म असल में कसरत रिवायत का नाम नहीं, अल्लाह के डर का नाम है। हदीस में आता है, हर इल्म साहब इल्म पर हुज्जत है, उसके खिलाफ हुज्जत बनेगा सिवाय उस इल्म के जिस पे अमल कर लिया गया। तो लिहाजा हमने अपने ऊपर गौर करना है, क्या हशियत है, क्या अल्लाह का खौफ है, क्या जो सीखते हैं उस पे अमल के लिए सीखते हैं या सिर्फ मालूमात में इजाफे के लिए या मालूमात को दोहरा लेने के लिए। इल्म वही है जो खशियत पैदा कर दे। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। और आज आपको आलिम की तारीफ भी पता चल गई होगी। लोग कहते हैं आपके सालिम की डिग्री, यानी आज हमारे यहाँ आलिम एक डिग्री का नाम हो गया, आलिम फाजिल का कोर्स, आलिमा फाजिला का कोर्स। मेरे पास एक दफ़ा एक फ़ोन आया, बात हो रही थी तो मैंने कहा आप कौन है, कहने लगी मैं आलिमा हूँ। मैंने समझा नाम होगा, होता है कुछ लोगों का। मैंने कहा अच्छा माशाल्लाह आपका नाम है ये। कहती नहीं मैं आलिमा हूँ। मैंने कहा जी क्या मतलब। फिर बताने लगी, उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन इस बात से कराया कि मैं आलिमा हूँ और मैंने फ़लाँ मदरसे से 6-7 साल का कोर्स किया है। तो ख़ुद को आलिम कहलाने का हक़ तो तभी है जब हमारे अंदर खशियत होगी। हमें नहीं पता कौन आलिम है, क्योंकि अपने दिल की खशियत हर बंदा जानता है। फिर दूसरी चीज़ इसमें अल्लाह से तिजारत करने वाले, 6 बातें बताई। करना चाहते हैं पहले आप बताइए, दुनिया में किसको कारोबार अच्छा नहीं लगता, किसको तिजारत अच्छी नहीं लगती, लेकिन करते हैं और फिर 6 महीने में तौबा कर लेते हैं, अब नहीं करेंगे, सारी उम्र की लगी लगाई जाया हो गई। लेकिन अल्लाह की तिजारत अनोखी तिजारत है। कैसे, कौन होते हैं अल्लाह की तिजारत करने वाले, किताब की तिलावत करते हैं, यानी अपनी तिजारतों पे भी किताब पढ़ते हैं, नमाज कायम करते हैं, फिर जो रिस्क अल्लाह ने उनको दिया उसमें खुले और छुपे खर्च करते हैं। इस तिजारत में कभी नुकसान नहीं, गारंटी है इसकी, यानी कोई लॉस नहीं होगा, कुछ मनी नहीं डूबेगी, बैंकरप्सी नहीं होगी। कैसे, क्यों, कि अल्लाह पूरे पूरे अजर देगा और अपने फजल से और देगा। अगर दुनिया में अल्लाह के साथ तिजारत करके कुछ छूट भी गया तो कियामत के दिन पूरे नफे के साथ मिल जाएगा। अल्लाह के साथ तिजारत करना क्या है, उसकी किताब की खिदमत का आजम कर लीजिए, इसके लिए अपनी जिंदगियों को वक्फ कर दीजिए। ये हाथ से छूटे ना, इस पैगाम को जो अपने दिल पे लिया है अब आगे पहुंचाना है, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, वरना याद रखिए आगे बड़ी ज़बरदस्त आयत आ रही है। और मैं खौफ ज़दा हो जाती हूँ इस आयत को पढ़ने के बाद। अल्लाह ताला कहते हैं मैंने किताब तो दी नबियों को, दी आयत नंबर 31 में, हाँ किताब दी, उनके पास वही आई, लेकिन उनके बाद क्या हुआ, किताब को लेने वाले लोग 3 किस्म के हो गए। थुम औरसनल किताब अल्लज़ीन अस्तफ़ईना मिन इबादिना, वो तो चुने हुए थे अल्लाह के बंदे, लेकिन किताब पढ़ने के बाद 3 रवैये सामने आए लोगों के, कौन कौन से, फमिन हम जालिमुल्ली नफ्सी, इसको हाईलाइट कर लीजिए, कुछ लोग जो अपने नफ्स पे जुल्म करते हैं, ये कौन लोग हैं, जो फराइज में कोताही और हराम का इर्तिकाब करते हैं, जानते बात बूझते फर्ज नहीं अदा करते और हराम से रुकते नहीं। ये उम्मत मुस्लिमा के 3 गिरोह हैं, कुफार की बात नहीं है। दूसरे कौन है, मिन हम मुख्तसित, बीच की राह में, दरमियाने दरमियाने रहो, ये कौन से लोग होते हैं, जो फराइज तो कर लेते हैं अदा, लेकिन नवाफिल और सुन्नतों के तारिक होते हैं, मिले जुले अमल हैं, नमाजें भी पढ़ ली और नाराज भी कर दिया अल्लाह को। और तीसरे लोग हैं, व मिन हम साबिकुम बिल खैरात, जो भागते हैं नेकियों की तरफ, कौन, फराइज भी, सुन्नतें भी, नफिल भी, वो ये नहीं पूछते ये जायज़ है या नाजायज़ है, वो गिन गिन के नेकियां नहीं करते, वो तोल तोल के नेक वजीफे नहीं पढ़ते कि इसका इतना सवाब और इतना सवाब, वो भाग भाग के नेकियां करते हैं। आप अपने आप को देख लें कि आप किधर हैं, हर बंदा अपने आप को देख ले तो मेरे हाल मालूम हो जाएगा। आज 22 पारे हमने पढ़ लिए, 22 पारे हमारे सीने में उतर गए, अब अपना रवैया हम देख लें कि अभी भी नफ्स पे जुल्म है या बीच बीच के अंदर हैं, या फिर साबिकुम बिल खैरात। अल्लाह ताला साबिकुम बिल खैरात में कर दे। और आखिर में बताया कि क्यामत के दिन इस उम्र का हिसाब होगा, पूछा जाएगा अवलम नो अमिरकुम, क्या मैंने तुम्हें एक लंबी उम्र ना दी थी, यानी जब इंजाम होगा नेकी में सबकत ले जाने वाले अल्लाह के पास जाएंगे तो उनको जन्नत में मोतियों और कंगनों से आरास्ता किया जाएगा, उनके लिबास रेशम के होंगे, वो अल्लाह का शुक्र करेंगे जिसने हमें नेमत दी, और वहाँ उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई थकन नहीं होगी। मैं सोचती हूँ कि सोच के भी कुछ होता है कि जन्नत में कुछ नहीं करना पड़ेगा। मेरे मियाँ कहते हैं तुम वहाँ भी पढ़ाओगी, तुमने वहाँ भी कहना है पढ़ाओ, मैंने कहा मेरे पास कोई आएगा ही नहीं पढ़ने, वो सारे माशाल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से खुद ही उन अच्छे मुकामात को पा लेंगे। तो मैं उनको कहती हूँ क्या वहाँ भी रोजे रखेंगे, आपको जो चीज़ अच्छी लगती है बंदे को वो वहाँ भी अच्छी लगती है। तो बहरहाल उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने कुफर करने वालों के लिए जहन्नम की बात की, कि किस तरह से वो चिल्लाएंगे और चिंघाड़ेंगे, और वहां उनसे पूछा जाएगा कि हमने तुमको उम्र ना दी। इसके बारे में एक रिवायत आती है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला एक पुकार लगाएगा, कहाँ है 60 साल वाले। जब वो लोग खड़े होंगे, फिर उनसे हिसाब लिया जाएगा, तो वो उज़र रखेंगे, हमने ये नहीं किया, ये वजह थी, ये वजह थी। तो उनको कहा जाएगा, क्या अवलम नो अमिरकुम, क्या इतनी लंबी उम्र तुम्हें नहीं दी थी कि तुम उसमें कुछ तो नसीहत लेते। तो इसीलिए बाज़ रिवायात में आता है कि 60 साल से लंबी जिसको उम्र मिल गई या उसके करीब, उससे सख्त हिसाब होगा। क्यों इतनी मुद्दत दी, तुम 1-2 साल लगा के उसकी किताब नहीं पढ़ सके? 1 महीने के लिए तो जमे, क्या 1 साल का सुन के भाग जाओगे? 2 साल का सुन के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाएगी? दुनिया की किताबें 10-10, 20-20 साल पढ़ते हैं, लेकिन अल्लाह की बात नहीं पढ़ते। अज़म कीजिए इस वक्त अपने साथ, दिल से नियत करें कि अल्लाह हमने इस किताब से जुड़े रहना है और इसको ले के आगे तक जाना है इंशाअल्लाह ताला। रुकू नंबर 17, इन अल्लाह आलिमुल गैब समावाती वल अर्द, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है आसमानों और ज़मीन की पोशीदा चीज़ों का, बेशक वही जानने वाला है सीनों की बातों का, वही ऐसा है जिसने तुमको आप ज़मीन में आबाद किया, पस वो शख्स जो कुफर करेगा, इसके कुफर का वबाल उसी पर पड़ेगा, और काफिरों के लिए इनका कुफर इनके परवरदिगार के नज़दीक नाराज़गी ही बढ़ने का बायस होता है, और काफिरों के लिए इनका कुफर खसारे ही में पढ़ने का बायस होता है। आप कहिए कि तुम अपने मुकर्रर करदा शरीकों का हाल तो बताओ, जिनको तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो, मुझको ये बतलाओ कि इन्होंने ज़मीन में कौन सा हिस्सा बनाया है, या इनका आसमानों में कुछ हिस्सा है, या हमने इनको कोई किताब दी है कि ये इसकी दलील पर कायम हो, बल्कि ये जालिम एक दूसरे के साथ धोखे की बातों का वादा करते हैं। यकीनी बात यह है कि अल्लाह ताला आसमानों और ज़मीन को थामे हुए है कि वो टल ना जाए, और अगर वो टल जाए तो फिर अल्लाह के सिवा कोई इनको थाम नहीं सकता, वो हलीम गफूर है। और इन कुफ्फार ने बड़ी ज़ोरदार किस्म की कसम खाई थी कि अगर इनके पास कोई डराने वाला आए तो वो हर एक उम्मत से ज़्यादा हिदायत कबूल करने वाले हों। फिर जब इनके पास एक पैगंबर आ पहुँचे तो बस इनकी नफरत ही में इजाफा हुआ। निस्तिकबारा फिल अर्दी व मकरोसई, दुनिया में अपने आप को बड़ा समझने की वजह से और इनकी बुरी तदबीरों की वजह से, और बुरी तदबीरों का बवाल इन तदबीर करने वालों पर ही पड़ता है। सो क्या ये इसी दस्तूर के मुंतजिर हैं जो अगले लोगों के साथ होता रहा? सो आप अल्लाह के दस्तूर को कभी बदलता हुआ न पाएंगे, और आप अल्लाह के दस्तूर को कभी मुंतकिल होता हुआ न पाएंगे। और क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं, जिसमें देखते भालते कि जो लोग इनसे पहले हो गुजरे हैं इनका अंजाम क्या हुआ, हालांकि वो कुव्वत में इनसे बड़े हुए थे। और अल्लाह ऐसा नहीं कि कोई चीज़ इसको हरा न दे आसमानों में और ज़मीन में, यानी अल्लाह ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इसको हरा दे ना आसमानों में और ना ज़मीन में, वो बड़े इल्म वाला है और बड़ी कुदरत वाला है। वलो युआखिज़ुल्लाहुन्ना सबीमा कसबू मा तरका अला ज़हरिहा मिन दाब, अगर अल्लाह ताला लोगों पर इनके आमाल के सबब दादोगीर फरमाने लगता, यानी इनकी पकड़ धकड़, तो रुए ज़मीन पर एक जानदार को ना छोड़ता, लेकिन अल्लाह ताला इनको एक मुकर्रर मुद्दत तक मोहलत देता है, पस जब इनकी वो मियाद आ पहुँचेगी तो अल्लाह अपने बंदों को आप देख लेगा। ये था रुकू नंबर 17, इसका उन्वान क्या है, सुन्नत इलाही। अल्लाह ताला ने शुरू में अपनी कुछ चीज़ों को सामने रखा जो उसकी तौहीद की अलामतें हैं हमारे सामने, ज़मीन व आसमान की हर चीज़ से वाकिफ़, सीने के राजों से वाकिफ़, इंसान को खलीफा बनाने वाला, ज़मीन व आसमान में को टलने वाला नहीं, यदि कोई ऐसा नहीं कि जो इन चीज़ों के आगे इसके साथ मुकाबला करे। फिर कुफर की बात हुई कि इसके बावजूद अगर कोई कुफर करता है तो उसका वबाल उसी के ज़िम्मा, इनका कुफर अल्लाह के गज़ब को भड़काता है, और काफिरों के लिए नुकसान के सिवा कोई तरक्की नहीं। फिर शिर्क की कोई सनत नहीं, इसके बारे में 4 बातें पता चली, अल्लाह के सिवा कोई खालिक नहीं, ज़मीन व आसमान में किसी की शराकत नहीं, अल्लाह ने कोई सनद नहीं दी इस बात की कि मेरे साथ किसी को शरीक बनाओ। सनद देने का मतलब ये होता है कि अथॉरिटी दे दी, कि अच्छा तुम इससे सुन लो, ये मेरा ही असाइन बनता है। ऐसा होता है ना दुनिया में, आपका कायम मुकाम। तो अल्लाह ताला ने तो किसी को नहीं बनाया, और जालिम शिर्क करके खुद ही अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और फिर हमने देखा कि जिसने हिदायत को झुठलाया, उसकी हिदायत उससे छिन गई, और हर दिन उसके अंदर ज्यादा सरकशी हुई। और दो बातें पता चली हमें, अपने आप को बड़ा समझना और बुरी तदबीरें करना। इसकी वजह से अमूमन लोगों की पकड़ होने लगती है, और फिर बिलाखिर हम सबको मुखातिब करके कहा कि इबरत क्यों नहीं लेते लोगों की बातों पे, देखो तो सही तुमसे ज्यादा ताकतवर थे, कोई इनको नहीं बचा सका, तो फिर अगर आज कोई अकड़ेगा तो उसको कौन बचाएगा? और अगर अल्लाह ताला लोगों के हर गुनाह पे उनको पकड़ ले, तो जमीन में कोई जीता हुआ ना रहे। अपने लिए सवाल लिखिए, क्या मैं अल्लाह की तरफ से मोहलत को उसका इनाम तो नहीं समझ रही? और क्या इन सारी बातों को सुन के मैंने लिए अपने लिए फिर कोई अमल की बात ली है? अल्लाह ताला हमें हम पे रहम करे। यहीं पे ख़त्म करते हैं सूरत यासीन, खूबसूरत सूरत है। मैं चाहूँगी कि कल हम सब एक स्ट्रेच में इसको शुरू करेंगे पीछे से लेते हुए। आज की आयत तदब्बर सूरत अल फातिर की आयत नंबर 15 से 18 तक। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा इलल्लाही। शाम को आयत तदब्बर के सिलसिले में आप इसको सुन सकते हैं मज़ीद। आज की हदीस पढ़ देती हूँ आपके सामने। इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल हय्युन सितीरुन युहिब्बुल हया वस्सत्र। अबू दाऊद की रिवायत है, यकीनन अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा हया करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा पर्दापोश हैं, और हया और पर्दापोशी को पसंद करते हैं। तो हया और दूसरों की पर्दापोशी। आज की दुआ बड़ी खूबसूरत है, वैसे तो हर दुआ ही खूबसूरत होती है, लेकिन ये वो दुआ है कि वाकई इसके बारे में आता है कि किसी इंसान को अगर लगता है कि उसकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। कभी कभी लगता है ना कि ज़िंदगी में हालात जम जाते हैं, जमाव का शिकार होता है, हालात बदल ही नहीं रहे, चेंज ही नहीं आ रही ज़िंदगी में, तो वो ये दुआ पढ़ के दुआ करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमदिका नासी यदी भी यदिका मादेन फी या हुक्मुका अतलुन फी या कजाउक अस्अलुका बिकुल इस्मिन हुवा लका समैत बिही नफ्सक औ अनज़लतहू फी किताबक औ अल्लमतहू अहदम मिन खल्किक अव इस्तासरत बिही फी इल्म अल्गैब इंदक अन तजअल अल्कुरआन अल्अज़ीम रबी कल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाबा हम्मी व गम्मी। ए अल्लाह मैं तेरी बंदी हूँ। बाज़ लोग इसको इन्नी अमतुक से भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अरबी लफ्ज़ वही है, और अगर हम अपने लिए मुअन्नस के सीगे करते हैं तो इंशाल्लाह किफ़ायत है, लेकिन कुसरा भी पढ़ना चाहे तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं। ए अल्लाह मैं तेरी बंदी हूँ, और तेरे बंदे की बेटी हूँ, और तेरी बंदी की बेटी हूँ, मेरी पेशानी तेरे काबू में है, यानी मेरी किस्मत तेरे हाथ में है, मेरे हक में तेरा हुक्म जारी है, तेरा फैसला मेरे बारे में इंसाफ के साथ है, यानी तू मेरे साथ जो भी मामला करता है इंसाफ वाला करता है, यानी अपनी तकदीर पे राजी हूँ। मैं तुझसे सवाल करती हूँ तेरे हर उस नाम के साथ जो तूने अपने लिए पसंद किया, या अपनी किताब में तूने उतारा, या अपनी मखलूक में से किसी को सिखाया, या अपने इल्म गैब में से तूने इसे इख्तियार किया। अमूमन हम कहते हैं 99 नेम्स ऑफ अल्लाह, इसमें हम क्या कह रहे हैं कि अल्लाह इस कुरान में जितने तेरे नाम आए सबके साथ तुझे पुकारती हूँ, फिर जिनको तूने अभी लोगों से छुपा रखा है उनके भी नामों के साथ तुझे पुकारती हूँ। किसी मखलूक को, परिंदों को, चिड़िया को, तोते को, बिल्ली को, जिसको भी जो तूने अपना जिक्र का तरीका सिखाया, मैं उस नाम से तुझे पुकारती हूँ। कितना प्यारा अंदाज है बात करने का, कितना प्यार आता होगा अल्लाह ताला को सुन के। और फिर मांगा क्या, सारी बातों के बाद कहा क्या, अंत जलल कुरान अल अजीम रबी या कल्बी, ए अल्लाह इस कुरान को मेरे दिल की बहार बना दे, व नूर सदरी और मेरे सीने का नूर बना दे, व जला हुज़्नी और मेरे रंजो गम से निजात, व ज़हाबा हम्मी व गम्मी और मेरे गमों और परेशानियों को दूर करने का जरिया बना दे। खूबसूरत दुआ है। अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल करे। आज की कमिटमेंट जो है वो क्या है कि सोते हुए दाएं करवट पर सोने की आदत डालनी है। करते हैं ऐसे, यानी दाएं बाई साइड ऊपर हो और दाएं करवट आपकी नीचे हो। और आज की किताब क्या है, बाजार जरूर जाऊंगी। अल्लाह ताला आप सबको इस वक्त का बेहतरीन अजर अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।